ओमशत। बाबा के घर में आप सभी पधारे हैं विशेष तपस्या के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ? देखो लॉकडाउन के बाद अब जब ऊपर और नीचे में भट्टी शुरू किया है तो आप सबको ऊपर का चांस लग गया। अक्सर चाहते हैं सभी के ऊपर का मौसम का भी आनंद ले और भट्टी का भी आनंद ले। और जैसे कहा जाता है कि यहाँ का साइलेंस का भी आनंद ले। और ऐसे ज्ञान सरोवर में ज्ञान की बातों का अध्ययन करें कि जिससे हमारे अंदर अनेक प्रकार के खजाने की हम वृद्धि कर सके। तो ऐसे आप सबको चांस मिला है। शायद ये दूसरा तीसरा ग्रुप है लेकिन आप लोगों का नंबर पहले लग गया, तो इसीलिए बहुत बहुत पदम पदम भाग्यशाली हो सभी। आज का विषय भी बहुत सुंदर है। चारों विषय में पास विद ऑनर कैसे होना है, और ये ही शायद हम सभी का लक्ष्य है कि हम सभी को पास विद ऑनर जरूर होना है। सिंपल पास होना नहीं चाहते हैं लेकिन पास विद ऑनर जरूर होना है। ये तो जरूर है कि बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि बच्चे पास विद ऑनर बनना है, अर्थात 108 की माला में आ जाना। तो हम सभी की रेस है कि उस 108 की माला में हम सभी पिरो जाए। थोड़ा नंबर वार हो जाते हैं लेकिन फिर भी हर एक अंदर से 20 नाखूनों का जोर लगा करके भी पास विद ऑनर होना चाहते हैं। पास विद ऑनर होने के लिए बाबा ने जो कुछ सिंपल बातें हम बच्चों को बताई है, बाबा की बातें होती बहुत सरल और स्पष्ट लेकिन करने में कभी कभी मेहनत लगती है, लेकिन फिर भी जब करना आरंभ कर देते हैं तो सरल भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि बाबा की आज्ञा के हिसाब से चलते हैं तो बाबा की मदद और हिम्मत भी आ जाती है। तो सबसे पहले पास विद ऑनर होने के लिए बाबा ने पास शब्द दिया है हम बच्चों को। बाबा की मुरली याद आती है, दो चार मुरलियां बाबा की ऐसी है अव्यक्त, जिसमें बाबा ने कहा पास शब्द को खाली याद रखो। पास होना है, पास करना है और पास रहना है। ये एक शब्द को भी अगर हम अपने ध्यान में रख लेते हैं, पुरुषार्थ में उसको अप्लाई कर देते हैं तो पास विद ऑनर होना कोई बड़ी बात नहीं है। पास होना है अर्थात मुझे ये लक्ष्य स्पष्ट हो कि मुझे पास विद ऑनर होना है, और उसके लिए ये दो बातें पास करना है और पास रहना है। पास करना है अर्थात जो बातें आई, जीवन है, ब्राह्मण जीवन सदा काल एक जैसा तो नहीं रहता है, कभी कुछ हिसाब किताब आ गए, कभी कुछ साइड सीन्स आ गई ड्रामा की, कभी कुछ और बातें हो जाती है। तो चढ़ाव उतराव निरंतर है ही है, लेकिन उन सब बातों को देखते हुए सुनते हुए नहीं सुनना, नहीं देखना और उसको पास कर देना, क्योंकि देखते हुए भी नहीं देखना जो बाबा ने कहा, अगर देख लिया और उसको नहीं देखना करना नहीं आया तो उस चीज का जो इम्पैक्ट रह जाता है वो बहुत अधिक होगा और वही हमें कहीं न कहीं फेल होने के लिए भी आधार बन जाएगा। इसलिए उसको फुल स्टॉप लगाना और पास कर देना। आई है सीन्स है, साइड सीन्स है और वो साइड सीन्स को कभी पकड़ा नहीं जाता है। उसको अगर पकड़ लिया बुद्धि से भी तो फिर वही बातें योग में सेवा करते समय हर जगह पर चारों ही सब्जेक्ट में वो हमें बार बार अंदर में जैसे दादियां कहती ठका करती रहती है और इफेक्ट करती रहती है माइंड के ऊपर, संकल्पों को प्रभावित करती रहती है, हमारी धारणाओं को प्रभावित कर देती है, योग को प्रभावित कर देती है। इसीलिए कोई भी साइड सीन को आएगी छोड़ देना है, चली जाए, लेट गो कर दो उसको, उसको कभी भी बुद्धि से भी पकड़ के नहीं रखना है। इसीलिए वो बातों को फुल स्टॉप लगाना भी आना चाहिए। फुल स्टॉप लगाने का तरीका जो बाबा ने बताया है वो यही है कि बच्चे उस सीन को परिवर्तन कर लो। कोई भी सीन आई लाइफ में, आनी तो है, अंत तक आनी है और इसीलिए जब वो सीन आती है तो उसको परिवर्तन कैसे करेंगे, तो यही अंदर में परिवर्तन करके सोचो, ये सीन मुझे क्या तोहफा देके गई है, क्या अनुभव देकर के गई, क्या शिक्षा दे करके गई। तो उसको जब पॉजिटिवली पकड़ लेते हैं, उन शिक्षाओं को हम याद कर लेते हैं, तो फिर वो बात अंदर में ठका नहीं करेगी या अंदर में हमारे योग को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि हमें अंदर से जब ये है कि ये अनुभव प्राप्त हुआ, ये सीख प्राप्त हुई, ये तोहफा के रूप में मुझे प्राप्त हुआ, ये कल्याण मेरे लिए हुआ, तो वो कल्याण को देखते हुए खुशी होगी और जितना खुशी में रहेंगे तो हर सीन को पास करते हुए आनंद का अनुभव करेंगे और ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। तो उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना सहज हो जाता है। दूसरी बात कि पास रहना है, पास रहना है अर्थात सदा। आज जैसे बाबा ने मुरली के अंदर बहुत सुंदर बात बताई कि सच्चे आशिक की निशानी क्या है, तो उसमें बाबा ने कहा सर्व संबंधों का अनुभव बहुत जरूरी है। पास रहने के लिए सारे दिन समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से बाबा के साथ वो संबंध का अनुभव करो। तो हर वक्त बाबा के साथ रहने का अनुभव निरंतर हो जाएगा और सर्व संबंधों की प्राप्ति भी सहज हो जाएगी। तो पास रहना खुशी देंगी ना, एक इनर सेटिस्फेक्शन देगा, है ना, तृप्ति का अनुभव कराएगा। तो इसीलिए सर्व संबंधों के आधार पर पास रहना है। कभी कौन सा संबंध ले लिया, कभी कौन सा संबंध ले लिया, कभी किस संबंध से बाबा को याद कर लिया, कभी किस संबंध से याद कर लिया, है ना, तो निरंतर हो जाएगा। क्योंकि पास विथ ऑनर होने के लिए जो बाबा हमेशा हमें कहते हैं, बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ये नहीं कि अभी जोड़ा अभी टूटा, अभी जोड़ा फिर एक घंटे के बाद जोड़ा, फिर टूट गया, फिर दो घंटे के बाद याद आई, फिर जोड़ा, फिर टूटा, फिर चार घंटे के बाद याद आ गई। ये अगर निरंतर नहीं है तो फिर पास विथ ऑनर कैसे होंगे। जिस तरह एक बच्चा पढ़ता है तो जितनी उसमें मेहनत है, हर बात का स्मरण उसको रहता है, उतना ही पास विथ ऑनर होना स्वाभाविक है उसके लिए। तो इसीलिए जो है निरंतर यानी बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल माना सालों के हिसाब से नहीं कह रहे हैं, लेकिन जब बहुत काल बाबा कहते हैं तो बहुत काल का भाव ही है कि जो हमारी जो स्थिति है वो निरंतर ज्यादा होनी चाहिए और टूटने वाला समय कम होना चाहिए। घड़ी घड़ी टूटते रहे जोड़ते रहे उसमें मजा नहीं है, लेकिन जितना ये कंसिस्टेंसी हमारी बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है, उतना ही ये हमें पास विथ ऑनर होने में बहुत मदद करता है। दूसरी बात, तो सबसे पहली बात तो ये एक शब्द याद रखना। दूसरी बात जो बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे तीनों सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है पास विथ ऑनर होने के लिए, क्योंकि जब तक तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त नहीं है तो पास विथ ऑनर नहीं है। एक सर्टिफिकेट भी अगर कम हो गया तो भी पास विथ ऑनर होने में थोड़े मार्क्स के लिए या परसेंटेज थोड़ा सा कम हो करके उस समय पश्चाताप होगा। जैसे कोई बच्चा डिस्टिंक्शन में अगर हो और बस 1-2% के लिए पीछे हो जाए तो उसको कितना अफसोस होता है। और उसके लिए जैसे दुनिया में भी एक बच्चा पढ़ाई जब करता है तो वो यूनिट टेस्ट पर भी उतना ही ध्यान देता है, क्योंकि वो मार्क्स भी ऐड होते हैं फाइनल मार्क्स। तो इसीलिए यूनिट टेस्ट में जो मार्क्स मिले हैं उसमें भी मेहनत करता है, तब वही मार्क्स ऐड हो जाते हैं परसेंटेज के रूप में और वो हमारे परसेंटेज को बढ़ा देते हैं। ठीक इसी तरह जो बाबा कहते हैं कि हमें तीनों प्रकार के सर्टिफिकेट लेने हैं, तो तीनों प्रकार के सर्टिफिकेट लेना माना जो समय प्रति समय यूनिट टेस्ट आती है ब्राह्मण जीवन के अंदर, उसमें भी कितना हम पास हुए या कितना फेल हुए, किन किन बातों के आधार पर हम पास हुए या कौन सी गफलत के कारण हम फेल हुए, तो वो मार्क्स भी उसमें ऐड होते हैं। तो ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने की जो बीच बीच में एग्जाम है, खास करके स्वयं स्वयं से संतुष्ट, परिवार मुझसे संतुष्ट, क्योंकि अक्सर हमारा फेलियर वही हम चलते चलते गफलत कर देते हैं। ठीक है, चलता है, इतना हमें करना है। और इस तरह से कभी कभी हम दूसरों की भावनाओं को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, उनको कंसीडर नहीं करते हैं, तब वो हमें सर्टिफिकेट देने वाले नहीं है। ये नहीं कि फाइनल में ही ये तीनों सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं, यूनिट टेस्ट में भी एक एक परीक्षा जो आती है लाइफ में उसमें भी ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए वो संतुष्टि, स्वयं स्वयं से संतुष्ट, सर्व मुझसे संतुष्ट, क्योंकि तभी बाप भी मुझसे संतुष्ट होगा। तो आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा, तृप्ति, संतुष्टि, और ये संतुष्टि का सर्टिफिकेट जितना हमारा ज्यादा हमने कलेक्ट किए हैं जीवन पर्यंत, ब्राह्मण जीवन पर्यंत, उतना ये फाइनल एग्जाम के अंदर भी हमें मदद करेगा। इसलिए ये संतुष्टता का सर्टिफिकेट हर कदम में प्राप्त करना बहुत जरूरी है, और हर कदम में प्राप्त करने के लिए जैसे आज बाबा ने कहा, एक है दिमाग और एक है दिल। दिमाग यूज करने वाले को सफलता अगर मिल जाती है लेकिन संतुष्टता कम होती है, दिल वालों को संतुष्टता अधिक, भले अगर प्राप्ति में कम भी हुआ लेकिन संतुष्टि अधिक प्राप्त हो जाती है उसको। तो ये सर्टिफिकेट हमें लेना है, क्योंकि बाबा का समाने का स्थान भी दिल है, भले पढ़ाई का समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन दिलाराम को दिल वाले ज्यादा पसंद है। दिल वाले का मतलब, दिल वाले का मतलब जहां भावनाएं बहुत श्रेष्ठ है, सुंदर है, एक दूसरे के प्रति भी जो हमारी भावनाएं हैं वो बहुत श्रेष्ठ और शुभ, क्योंकि वही तो दिल वाले बाबा को पसंद है कि आप व्यवहारिक स्तर पर हरेक के साथ में कैसी भावनाओं को लेकर के चल रहे हैं, कैसा व्यवहार एक दूसरे के साथ करके चल रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि ये तीनों सर्टिफिकेट लेना बहुत जरूरी है। बाबा ने हर आत्मा के अंदर कोई ना कोई विशेषता जरूर भरी है, जब उस विशेषता का प्रयोग करते हैं प्रैक्टिकल जीवन के अंदर, तो उस विशेषता के प्रयोग करते हुए भी उसमें शुभ भावना जरूर रहनी चाहिए, शुभ कामना जरूर समाई हुई रहनी चाहिए, और तब जाकर के हरेक आत्मा भी हमें शुभ भावना, दुआएं सहजता से देंगी। तो सर्टिफिकेट लेना माना दुआएं प्राप्त करना। जो बाबा दादी जानकी हमेशा कहते थे, ये सीजन है दुआएं लेने की और दुआएं देने की, यहां हमने जितनी दुआओं को इकट्ठा किया वही तो फाइनल में ऐड होगा, इसीलिए यहां हर एक की दुआएं कलेक्ट करना, ब्राह्मण परिवार की तो बाहर वालों की भी। ये नहीं कि ब्राह्मण बन जाने के बाद बाहर वालों से हमारा कनेक्शन समाप्त हो गया, नहीं, बाहर वाले भी कहे क्या बीके लाइफ इनकी बहुत अच्छी है, तो ये भी हमें सर्टिफिकेट, क्योंकि हर घड़ी हम किसी न किसी रूप से बाबा को प्रत्यक्ष कर रहे हैं, अपने कर्म के द्वारा, अपने व्यवहार के द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा, अपने बोलचाल के द्वारा, तब वो सर्टिफिकेट देंगे, तब वो दुआएं देंगे हमें। तो इसीलिए पास विथ ऑनर होने के लिए हमारे पास ये दुआओं का स्टॉक बहुत अच्छे से जमा होना चाहिए, और इसीलिए सर्टिफिकेट तभी हमें, ये दुआएं प्राप्त होना माना एक प्रकार से सर्टिफिकेट मिला हमें, किसी आत्मा को खुशी मिली मेरे द्वारा, उसे जो दुआएं दिया ये सर्टिफिकेट है, ये सारे सर्टिफिकेट काम करते हैं। जिस तरह दुनिया में भी कहा जाता है कि एक व्यक्ति जब जॉब के लिए जाता है तो जितने अधिक सर्टिफिकेट उसके पास होंगे, चाहे हर रीति का सर्टिफिकेट उसके पास है। भी कुछ समय पहले एक भाई अपना अनुभव सुना रहा था कि वो इंटरव्यू के लिए गया, कोई कंपनी में उसको जॉब मिलनी थी, लेकिन इंटरव्यू के लिए जब पहुंचा तो देखा इतने सारी लंबी लाइन है इंटरव्यू वाले की। तो उसने सोचा मेरी तो इतने मना वो भी नहीं है, ना एक्सपीरियंस है, और जब लोगों से बात करता था तो वो कहते हैं मेरे को तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, इतनी कंपनी में मैंने पहले किया है, इतनी कंपनियों का एक्सपीरियंस है सब। तो उसने सोचा मैं तो एकदम नया हूं, फ्रेश हूं, मेरे पास तो कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन उसने सोचा नहीं, बाबा मेरे साथ है ना, तो गया इंटरव्यू के लिए, अपने सारे सर्टिफिकेट लेकर के गया था। तो कहा कि जब वो सामने वाले सर्टिफिकेट देखने लगे तो उसमें जो अपना ये वैल्यू एजुकेशन कोर्स का एक सर्टिफिकेट था उसके पास में, तो उन लोगों ने जब ये सर्टिफिकेट देखा कि वैल्यू एजुकेशन, तो पूछा कि भाई ये वैल्यू एजुकेशन कोर्स तुमने किया है? कहा हाँ, मैंने इसमें डिप्लोमा कर दिया है। और व्यवहारिकता में किस तरह से, तो उसी एक सर्टिफिकेट पर उसको नौकरी मिल गई। देखो, ना एक्सपीरियंस था, कुछ नहीं। कहा हमें ऐसे लोग अपनी कंपनी में चाहिए जो वैल्यूज वाले हो, जो व्यवहारिक स्तर पर हरेक के साथ अच्छा तालमेल रख सके। दिमाग वाले नहीं चाहिए हमें, क्योंकि उन्होंने कहा दिमाग वाले जो होते हैं वो दूसरों की भावनाओं को कभी कभी ठोकर मार देते हैं, और वहां से ही वायुमंडल कंपनी का बिगड़ता है। तो हमें ईगो वाले लोग नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज वाले लोग चाहिए। बड़ी बड़ी डिग्री वाले थे, उनको नहीं मिला। क्यों? क्योंकि कहा उनका इतना ईगो था, इतनी कंपनियों का एक्सपीरियंस देख करके वो लोगों ने यही जजमेंट निकाला कि इतनी कंपनियों में भटक के आया है, जरूर हर जगह कुछ ना कुछ निकला है, तभी तो वो उसने छोड़ा या उन लोगों ने उनको ये दे दिया। तो कहा ऐसे लोग हमें नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज वाले लोग चाहिए। और जिसने अगर वैल्यू एजुकेशन कोर्स किया है तो उसे, तो कहने का भावार्थ कि ये जो हमारा व्यवहारिक स्तर पर जो ज्ञान योग धारणा सेवा चारों का एप्लीकेशन होता है, और ये एप्लीकेशन हमें जो दुआएं इकट्ठी करवाता है, ये एक एक दुआएं हमारे लिए एक एक सर्टिफिकेट है, जो फाइनल रिजल्ट में, क्योंकि सतयुग के अंदर तो सारे वैल्यूज वाले लोग है ना, दिव्य गुणों से संपन्न लोग हैं। तो जितना हमारे पास अधिक ये सर्टिफिकेट है, अर्थात वो हमें पास विथ ऑनर होने में बहुत मदद रूप हो जाएगा। तो ये दूसरी बात। तीसरी बात ये है कि ये चारों सब्जेक्ट में पास विथ ऑनर होना है। तो सबसे बड़ी बात जो बाबा कहते, चारों सब्जेक्ट का बैलेंस बहुत अच्छा चाहिए, क्योंकि बैलेंस वालों को ही ब्लेसिंग मिल सकती है। अगर बैलेंस ही नहीं रहा चारों सब्जेक्ट में, और कभी कभी यही हो जाता है हमारा, कभी देखो तो हम ज्ञान में बहुत अच्छा, पढ़ाई में बहुत अच्छा चल रहे हैं तो योग छूट रहा है, कभी सेवा में बहुत आगे भाग रहे हैं लेकिन अमृत वेला ही नहीं हो पा रहा है, धारणाएं नहीं हो पा रही है। तो कोई ना कोई एक सब्जेक्ट जैसे छूट जाता है या दो सब्जेक्ट छूट जाता है या एक सब्जेक्ट के पीछे पढ़ते हैं लग करके करते हैं तो तीनों सब्जेक्ट छूट जाते हैं हमारे। ऐसे नहीं, चारों सब्जेक्ट में बैलेंस, क्योंकि परमात्मा दुआएं हमें वहां प्राप्त होती है जो चारों सब्जेक्ट का बैलेंस लेकर के चलते हैं। तो वही पास विथ ऑनर स्वाभाविक रीति से हो सकते हैं, और इंडिविजुअल अगर एक एक सब्जेक्ट को लिया जाए तो इंडिविजुअल भी एक एक सब्जेक्ट में कौन सी बात आवश्यक है। तो ज्ञान का सब्जेक्ट कहो या पढ़ाई का सब्जेक्ट कहो, तो पढ़ाई के सब्जेक्ट में क्या होना चाहिए? मुरली तो रोज सुनना ही है, लेकिन पढ़ाई के सब्जेक्ट में जो हमने पढ़ा है उसका प्रैक्टिकल उपयोग, प्रैक्टिकल प्रयोग हमने अपने जीवन में कितना किया है। जिस तरह से कभी कभी हंसी में कहा जाता है कि कई लोग अपना परिचय में इतने साल से ज्ञान में हूं, तो कहा इतने साल से ज्ञान में तो हो लेकिन आप में ज्ञान कितना समय से चल रहा है। ये महत्व की बात है, ज्ञान चलना माना ज्ञान को अप्लाई करना। ज्ञान खाली समझ तक ना रहे, एक है जानना, एक है मानना और एक है चलना। तो दुनिया में बड़े बड़े विद्वान है जो जानते बहुत कुछ है, मानते भी है, लेकिन चलना कठिन है। और हम बच्चों को बाबा ने मुरली के द्वारा खुद मनन चिंतन करके चलना सरल कैसे हो, ये हमारे लिए बाबा ने जैसे खुद मंथन कर करके और प्रैक्टिकल अपने जीवन के अंदर ला करके फिर हमारे लिए सहज और सरल किया। जैसे कई बार बाबा के अनुभव हम सभी को मुरली में सुनने को मिलते हैं कि बाबा कहते हैं मैं इंजन हूं, सारे तूफान सबसे पहले तो मेरे पास आते हैं, क्योंकि तब मैं समझ सकता हूं कि बच्चों के लिए भी कितनी तकलीफ होगी, मुझे अनुभव होगा तो मैं वो अनुभव की बात पहले से ही ध्यान में दे दूंगा मुरली के द्वारा। और उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम चलेंगे कि भाई माया का आने का द्वार कहां कहां से है, तो उसमें गफलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबा के ये एक एक रतन लाखों की वैल्यू के हैं। क्या आज कोई लाखों रुपया खर्च करने के बाद भी ऐसे रतन प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो इतने अमूल्य रत्न जो हमें मिले हैं ऐसे वेस्ट करने के लिए नहीं है कि भाई उसको तिजोरी में बंद करके रख दिया। नहीं, बाबा कहे इन रत्नों को बांटो आप, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। इसलिए जितना उस खजाने को बढ़ाते जाओ। वो एक कहानी याद आती है कि एक राजा था, उसके तीन बेटे थे, तो उसको लगा कि अभी तीनों में से किसको राज्य सौंपू। तो उसने कुछ अमाउंट दिया तीनों को और कहा आप किस तरह से इस अमाउंट को यूज करते हैं वो आपके ऊपर, एक साल दिया जाएगा आपको ये सारा अमाउंट यूज करने के लिए, किस तरह से यूज करते हैं, है ना? कुछ फिगर भी दिया, 84 लाख कुछ अमाउंट दिया उनको, और इतना अमाउंट देकर कहा कि बस एक साल के बाद आपको मिलेंगे, आप अपनी अपनी रीति से जो करना चाहो इस अमाउंट को, जिस तरह से यूज करना चाहो यूज करो, रखना चाहो रखो। पहले ने सोचा भाई इतना अमाउंट मिला है, खर्च करो, आराम की जिंदगी मौज करो उससे, क्यों रखने का, किसके लिए रखने का। उसने खूब मौज पार्टियां करके उड़ाना चालू किया, उड़ा दिया। दूसरे ने सोचा कि अरे भाई रख देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा यूज करो, है ना, कुछ बचत भी तो रहनी चाहिए। तो उसने इतनी कंजूसी से यूज किया, काफी हिस्सा बचा लिया। और तीसरे ने सोचा कि नहीं, इसको मैं बिजनेस में लगाता हूं। उसने बिजनेस में लगाया और बिजनेस में लगा करके साल के अंत में तो डबल ट्रिपल कर दिया। तीनों साल के बाद जब गए राजा के सामने, तो पहले वाला तो खाली हाथ हो गया था, दूसरे ने काफी हिस्सा बचाया था जो दिया था उसमें से, बहुत कंजूसी से यूज किया था उसने खुद के प्रति, और तीसरे ने तो डबल ट्रिपल कर दिया। अब राजा राज्य किसको देगा, तीसरे को ही देगा जिसने डबल ट्रिपल कर दिया हो। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी हमें जितनी उम्र है, विनाश होने तक, शरीर छोड़ने तक, इतने श्वास हमें मिलते हैं, और उस श्वास को हम कैसे यूज करते हैं। बाबा ने उसको यूज करने के लिए ज्ञान का खजाना हमें बहुत अच्छा दिया है। अब उसको कई लोग रख देते हैं, कई लोग उसको यूज करते हैं, और कई लोग महादानी बन करके, दान करके डबल ट्रिपल कमाई कर लेते हैं। सफल किया जिसने, चाहे हरि के नाम सफल किया, चाहे लोगों के प्रति उसकी सेवा में सफल किया, तो जो सफल करने वाला है वो राज्य अधिकारी बन जाएगा। भविष्य राज्य अधिकारी बनने के लिए इन श्वासों को सफल करना, उसको मल्टीप्लाई करना बहुत आवश्यक है। इस एक जन्म में हम कितने श्वास को वेस्ट करते हैं, व्यर्थ गंवाते हैं, नेगेटिव चिंतन करके उसमें गंवा रहे हैं, या हम शुभ सोच करके, शुभ कर्म करके कितना उसको सफल करते हैं। महादानी बन करके कितना हमने इनको बांटा और बढ़ाया, जितना बांटते गए बढ़ता गया, बांटते गए बढ़ता है। लेकिन वो भी बाबा ने जो कहा है, सुपात्र को देख करके बांटना बहुत जरूरी है। तो ज्ञान का खजाना खाली रखने के लिए नहीं है, मनन चिंतन करते हुए अपने अंदर उसको विकसित करते हुए लोगों से शेयर करे, बांटे, उसको दे, उनका जीवन भी बने, ये जरूरी है, है ना। तो ज्ञान के सब्जेक्ट में जितना ज्ञान रतन हम बांट सकते हैं, तो बाबा कहे उसी के आधार पर पास विथ ऑनर होना भी सहज है। दूसरा, जैसे दुनिया में कहा जाता है कि कोई व्यक्ति पढ़ने में होशियार है, बहुत होशियार है, लेकिन रियल विद्या किसको कहा जाता है, तो कहा रियल विद्या उसको कहा जाता है जो जीवन के अंदर व्यवहार में विनय को ले आती है। विद्या से विनय आता है, अगर विनय नहीं है अपने लाइफ में तो वो विद्या क्या काम की। ठीक इसी तरह बाबा ने जो हम बच्चों को ज्ञान दिया है, ये हमारे प्रैक्टिकल जीवन के अंदर निर्माणता ले आए, अहंकारी हमें ना बनाए, क्या हमारे पास तो इतना ज्ञान है, दूसरे को तुच्छ देखना, अरे हमारे पास भक्ति से भी ऊंचा ज्ञान है? नहीं, बाबा कहे ये ज्ञान अगर आपने जीवन के अंदर धारण किया है तो उस ज्ञान से निर्माणता आपके जीवन में आएगी, आपके कर्म में आएगी, आपके व्यवहार में आएगी। तो इसीलिए ज्ञान का एप्लीकेशन, ज्ञान का यूज कितना किया, कैसे किया और उसके आधार से हमने अपनी जीवन कैसे बनाई और दूसरों की जीवन कैसे बनाई, ये हमें ज्ञान के सब्जेक्ट या पढ़ाई में पास विथ ऑनर बनाती है। दूसरा सब्जेक्ट जो कहा योग का, तो योग के अंदर बाबा ने जो हम बच्चों को बहुत सुंदर शिक्षा दी है, बाबा की कुछ समय पहले की बाबा की अव्यक्त मुरली हम सभी ने सुने, जिसमें बाबा ने कहा बाबा को योग लगाने वाले बच्चे नहीं चाहिए, योगी जीवन वाले बच्चे चाहिए। एक है योग लगाना और एक है योगी जीवन वाले। कई लोग कहते हैं आज हमने 2 घंटा योग लगाया, 2 घंटा योग लगाया तो बाकी 22 घंटा क्या किया, वियोगी रहे? नहीं, योग माना जिसको कहा जाए कि योगी जीवन वाला, और योगी जीवन के आचरण में क्या क्या होगा तो वो यहां होते हुए प्रैक्टिकल फरिश्ता स्वरूप, क्योंकि प्रैक्टिकल फरिश्ता स्वरूप कोई हमें ऊपर जाकर के नहीं बनना है, यहां ही फरिश्ता बनना है। अर्थात वो लाइटनेस हम यहां कितनी ले आ सकते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा के जीवन के अनुभव के माध्यम से जो दादियों ने अनुभव किया, वो यही कहते हैं कि बाबा जब चलते थे ना तो जैसे लाइट का एक बादल चला गया ऐसा महसूस होता था। इतनी लाइटनेस बाबा के अंदर थी, इतना बाबा का ऑरा, जो प्रभा मंडल था बाबा का वो इतना लाइट वाला था, जो दादियां कहती थी कि हम बाबा के सामने किसी की शिकायत सुनाने जाते थे या किसी की बात सुनाने जाते थे, बाबा के सामने जाकर के जैसे ही बाबा दृष्टि देता हम वो बात भूल जाते थे। बाबा पूछता था बच्ची कुछ कहना है और वो सारी बात ही गायब हो जाती थी। इतना बाबा के लाइटनेस थी जो हमारी स्थिति को भी लाइट बना दे, तो हम कहां तक पहुंचे हैं, हम उस अवस्था के नजदीक भी पहुंचे हैं। और उसके लिए कोई ये नहीं कि बाबा को बैठे बैठे ही वो सब सहजता से मिल गया, बाबा ने पुरुषार्थ किया। 2:30 बजे बाबा उठते थे और उठ करके बाबा अपने साथ मेहनत करते थे, शिव बाबा को याद करने की वो मेहनत अंदर में करते थे, इतनी पावरफुल रीति से मेहनत करते थे, क्योंकि तभी तो बाबा को अनुभव होता था कि हाँ बच्चों को कितना मुश्किल होता होगा कई चीजों के लिए, वो बाबा खुद अनुभव किए हैं तब ये स्थिति। और इसीलिए लास्ट में जो बाबा ने मंत्र दिया कि इस पढ़ाई में पास विथ ऑनर होना है तो निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी, ये तीनों हमारी स्थिति हो। निराकारी स्वरूप का अभ्यास इतना अधिक हो तब ये लाइटनेस अंदर में आएगी। जितना अशरीरीपन का प्रैक्टिस हो हमारा, फरिश्ते स्वरूप का प्रैक्टिस हो हमारा योग के समय, उतना ही प्रैक्टिकल जीवन में जब व्यवहार में आते हैं तो हर एक के साथ में वो लाइटनेस को फील कर सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। तो निराकारी स्थिति अधिक होनी चाहिए। तो मनसा में निराकारी, वाणी में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी, ये तीनों का बैलेंस जब है, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी का, तब जाकर के हमें पास विथ ऑनर का सर्टिफिकेट मिलता है या पास विथ ऑनर सहजता से हम बन जाते हैं। ब्रह्मा बाबा ने इसीलिए कहा कि करते करते अंत में यही सारे ज्ञान का निचोड़ जो बाबा ने दिया कि ये तीन के ऊपर विशेष अटेंशन दो आप, कि प्रैक्टिकल जीवन में जब योग में है तो निराकारी स्थिति बहुत जरूरी है। तीसरा सब्जेक्ट जो है दिव्य गुणों की धारणा का, तो उसमें जो है विशेष हमें निरहंकारीपन और निर्विकारी प्रैक्टिकल कर्मणा में, अर्थात हमारे जीवन के अंदर जितना हम दिव्य गुणों से संपन्न होते जाते हैं तो विकारों की कमजोरियां स्वतः सहज ही समाप्त होने लगे। वो विकारों का अंश जो छोटी छोटी कमजोरी के रूप में होता है, बाबा की एक मुरली याद आती है कि कई लोग सोचते हैं ये छोटी सी कमजोरी है ना, अंत तक तो ठीक हो जाएगी। लेकिन बाबा ने उस मुरली में पूछा था, बच्चे आपको पता है आपका अंत कब है? जो अंत तक ठीक, अगर मान लो कि अगली सेकंड ही अंत है तो कब ठीक होगा? और वो छोटी सी कमजोरी आपको पास करेगा, पास विथ ऑनर बनाएगा या आपको फेल कर देगा? क्योंकि ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां हमें फाइनल क्वेश्चन मालूम है, फाइनल एग्जाम के फाइनल पेपर क्या है मालूम है, पहले ही बताया जाता है। दूसरी बात, आपको जो है फाइनल क्वेश्चन क्या है ये भी मालूम, फाइनल पेपर तो मालूम है, फाइनल क्वेश्चन क्या आने वाला है ये भी मालूम है। उसके बाद भी अगर पास नहीं हो सके, अच्छा उसके बाद जो लिखा है, समझो हमने प्रैक्टिकल एग्जाम दिया है, उसका जो पेपर चेकर है वो भी हम ही है, पेपर चेकर भी हम है, और फाइनल मार्क्स जो देने वाले हैं वो भी बाबा नहीं देगा, आप खुद अपने आप को देंगे। कैसे? फाइनल पेपर हमें मालूम है कौन सा आएगा, नष्ट मोहा का आएगा, है ना? तो वो हमें देखना है, ये फाइनल पेपर है। फाइनल क्वेश्चन क्या है? बाबा ने बताया है कि फाइनल क्वेश्चन वही आएगा जहां आपकी कमजोरी है, वो कमजोरी माया का द्वार बनेगी, अंतिम घड़ी वो कमजोरी कहां ना आ जाए। तो फाइनल क्वेश्चन वही है, वहीं से आएगा। अच्छा पेपर चेकर हम ही है कि जैसे ही एग्जाम दिया और मालूम पड़ा कि गलत, तो उसी समय आपके अंदर संकल्प उत्पन्न होगा, फेल हो गए, मालूम होने के बाद भी पास नहीं हो सके, तो क्या दे दिया मार्क्स? अंदर से रियलाइजेशन जो निकला वो वहां छप गया, और उसी के आधार पर फिर बाबा के अभी तुमने ही कहा फेल हो गया, जाओ त्रेता में दास दासी बनो, है ना? जैसे बाबा की दो हफ्ते पहले मुरली चली थी कि कई बच्चे बाबा से पूछते हैं कि हम स्वर्ग में कौन सा पद पाएंगे, तो बाबा ने कहा था कि जितना आप अपनी कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकारी होंगे उतना राज अधिकारी बनेंगे, हाँ? जितना कर्मेंद्रिय के ऊपर अधिकार होगा आपका, उसके गुलाम नहीं होंगे, उतना राज अधिकारी बनेंगे। यहां जो गुलाम है वो वहां भी गुलाम है। तो आप खुद अपने आप को देख सकते हैं क्या बनने वाले हैं, कि पास विथ ऑनर बनेंगे, पास होंगे या फेल होने वाले हैं। अभी के पुरुषार्थ से मालूम, क्योंकि अंत घड़ी कब है ये मालूम नहीं है, एक घंटे के बाद भी हो सकती है। इसलिए ये इंतजार में नहीं रहो कि इतनी छोटी सी कमजोरी है ना अंत तक ठीक हो जाएगी, क्योंकि उसके पहले अंत हो गया तो क्या करेंगे, कहां जाएंगे, कौन सी उसमें जाएंगे, कैटेगरी में जाएंगे, ये देखना है। और जहां सेवा है तो सेवा के लिए, जैसे बाबा ने आज के वरदान में बहुत अच्छी बात कही कि बच्चे संकल्पों की सेवा, मनसा सेवा के ऊपर जो आज बाबा ने कहा, कि आप जितना मनसा से, क्योंकि अभी लॉकडाउन के समय हम किसी को पर्सनली ज्ञान नहीं समझा सकते हैं, और यही समय के हिसाब से देखो आज का वरदान भी ऐसा कि मनसा सेवा के लिए जितनी मनसा शुद्ध है, पावरफुल है, उतना दूर तक आपके एक एक शुद्ध संकल्प पहुंचते जाएंगे और उन आत्माओं को भी मदद मिलने लगेगी और वो सहजता से उसको प्रैक्टिकल जीवन में अनुभव करेंगे। तो खाली कर्मणा की सेवा हो ये नहीं, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, तीनों सेवा किस रूप से हमारी चल रही है उसके आधार पर। तो इसीलिए जहां ये चारों सब्जेक्ट को अगर देखा जाए, तो एक तो बैलेंस, और चारों सब्जेक्ट में जो बाबा ने हम बच्चों को कहा है उस हिसाब से उस श्रीमत को के ऊपर कितना चल रहे हैं, कितना आज्ञाकारी, वफादार, फरमान बरदार बन करके चल रहे हैं, ये हमें पास विथ ऑनर बनाएगा। अगर आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और फरमान बरदार नहीं होंगे, ये चारों बातें अगर नहीं होंगी, तो पास विथ ऑनर होना मुश्किल है। इसीलिए चारों सब्जेक्ट में किस तरह से पास विथ ऑनर होना है, ये बाबा ने हम बच्चों को समय प्रति समय बातें बताई हुई है। उसको एकत्रित करते हमें अपने पुरुषार्थ में अभी विशेष आगे दौड़ना है, ये विशेष करना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।